संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान। कहाँ तक हो गया था कल, है कुछ नाइन्टी फोर पे दो दफे है, वो हो चुका था, दूसरी दफे वाला है आगे देखो। हाँ कहाँ तक हुआ है, स्वामी जी का पढ़ा था क्या? नहीं स्वामी जी अधा कर्म और उद्देश्य का हार को इस प्रकार समझाते हैं, है ना, यही है ना। साधु के कहने से साधु के लिए गृहस्थ यदि आहार आदि बनाता है, पानी भरकर लाता है, उसे उष्ण करता है, अनेक प्रकार की रसोई बनाता है, तो उसे उद्देशक आहार कहते हैं। यदि साधु को यह पता लग जाए कि किसी कारण से यह ज्ञात हो जाए कि यह आहार अमुक गृहस्थ द्वारा मेरे उद्देश्य से बनाया गया है और वह साधु उसे ग्रहण कर ले, तो साधु को उद्देशक आहार ग्रहण करने का महान दोष लगता है। इसी प्रकार साधु उपदेश द्वारा अथवा व्यक्तिगत कहकर अपने लिए आहार बनाने की प्रेरणा देता है, तो वह अधा कर्म दोष से दूषित है। देखो अभी अपन पूरा पीछे से पढ़ते आए, पर अभी और चार पेज आगे पढ़ेंगे। इसमें दो आचार्यों के जितने भी उद्धरण है उन सब में ये बात है कि साधु का इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी रूप में, प्रेरणा दे, ये करे, जो कुछ भी करे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो उसके लिए उद्देश्य का आहार है। और क्योंकि वो साधु का उद्देश्य का आहार का त्याग है, गृहस्थ ने साधु के उद्देश्य से बनाया है तो वो गृहस्थ का दोष हुआ ना, गृहस्थ ने बनाया है, इसमें साधु का क्या दोष है? इसमें साधु का दोष नहीं है। यदि उसका ग्रंथ मात्र भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो साधु का दोष नहीं है। श्वेतांबरों में इस तर्क के आधार पर कि उसे मालूम पड़ जाए कि हमारे लिए बनाया है, तो भी वो उस उद्देश्य को मान लेंगे और उसका दोष हमें न लग जाए, तो वो जैन अजैन सबके यहां चले जाते हैं लेने के लिए। अब उसमें एक महादोष ये हो गया कि अजैन के यहां तो अनशन पानी का बना है, फिर वो जो शुद्ध गृहस्थ के लायक भी शुद्ध आहार नहीं रहा ना, और अभक्ष भक्षण जैसे मान लो वो आलू जमी के अंदर खाते हैं और चीजें, तो वो भी चीजें बनी होंगी। अब वो भले ही बो ना ले, लेकिन बनी तो उसी में है ना, चम्मच घर बोई है, चम्मच का उपयोग हुआ होगा, तो उसकी अति में उधर मामला बिगड़ गया। और दिगंबरों में ये तकलीफ हो गई कि अब कोई उतना शुद्ध भोजन करता ही नहीं है जितना मुनिराज करते हैं, तो उनके उद्देश्य तो बनेंगे ही, तो फिर भूखे ही रहना पड़ेगा। और जो गृहस्थ उतना शुद्ध भोजन करते हैं, जैसे अनुमृति, अब भी आहार देने वाले नहीं लेने वाले हो गए, अभी तो बनाते ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है अब तो जहां भी बनेगा उन्हीं के उद्देश्य से बनेगा ना। अब इन दोनों के बीच की संधि क्या है? गुरुदेव श्री के जितने भी कोटेशन हैं यहां भी दिए हैं अपन ने, और आगे आचार्यों के और चेतन जी छावड़ा के और ज्ञानेन्द्र बर्णी के दिए हैं, उनमें ये बारीक अंतर है। जो अंतर है ना वो इसमें स्पष्ट जो आचार्यों का कथन है वो ही सही दिखता है, क्योंकि उसमें ही चतुर्थ काल में भी संभव है। जब मुनिराज जंगल में रहते थे और जंगल से आते थे तो ये उनका इन्वॉल्वमेंट तो होने का सवाल ही नहीं था, कैसा उन्हें पता चल जाए किसी भी तरीके से जो ये बात है तो ये पता चल जाए। अब आप जंगल नगर में बैठे हैं और आकर के लोग कहेंगे तो पता तो चलेगा ही ना। जंगल में बैठे हैं भी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और उपदेश भी दे रहे तो सामूहिक रूप से दे रहे, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, कोई कदाचित प्रश्नोत्तर करे तो सामूहिक भी उत्तर देते हैं, तो एक कैसे पता लग जाएगा हम जब बाहर करने जाएंगे 4 किलोमीटर दूर थी 2 किलोमीटर दूर नगर में तो वहां पर किसने हमारे लिए बनाया किसने नहीं बनाया है। जो आदमी खड़ा होकर के हमें पड़काता हुआ मिलेगा उसका यही अर्थ हो गया ना कि उसने बनाया है भोजन, वो मुनि के लाए का हार उसके घर में है ना। तो उससे नहीं है, जो कल अपन ने बात कही थी अंत में कि वो मुनि राजों के लिए बनाया है तो नहीं, पर्सनली हमारे लिए बनाया हो और उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, ख्याल में आई ना, तो वो दोष लगेगा। बस अब गुरुदेव इसमें इतनी बात और करते हैं जो सीताम्बरों के मत में है और जो उसकी वजह से वो अजैनों के यहां से भी लाने लग गए। क्या देखो पढ़ते हम गुरुदेव का भी पढ़ेंगे और आगे और भी पढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष भी पढ़ेंगे। इसमें ये लगा ना, यदि साधु को यह पता लग जाए किसी भी कारण से ज्ञात हो जाए, अब तुम रिसर्च करने जाओगे तो पता लग ही जाएगा है? लेकिन वो उनका ध्यान उधर है ही नहीं, उनको इससे मतलब ही नहीं है कि तो हार को जाएंगे जो पड़गाएगा वो नवदा भक्ति पूर्वक मिलेगा वहां हार ले लेंगे, ख्याल में ना। यह अमुक गृहस्थ द्वारा मेरे उद्देश्य से बनाया गया है और वह साधु उसे ग्रहण कर ले तो साधु को उद्देश्य का हार का ग्रहण करने का महान दोष लगता है। इसमें एक बात और है कि जो वे सीताम्बर मुनि क्या करते हैं, एक घर से पूरा नहीं लेते थे। अभी की बात छोड़ दो, अभी की दिगंबरों को भी छोड़ दो और सीताम्बरों को छोड़ दो, अभी तो क्या होता है वो बहुत हमको उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमको वो संधि खोजनी है तो हमें भी मुनि बनना है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो हम कैसे उस मर्यादा को निभाएंगे। हमें उस दृष्टि से जैन धर्म का जो क्या आशा है दिगंबर धर्म का, हमें वो समझना है अत्यंत पवित्र हृदय से। तो वो कहते एक घर से नहीं लेंगे, 5 घर से लेंगे। तो 5 घर से लेंगे तो क्या होगा कि एक रोटी इस घर से, एक रोटी उस घर से, थोड़ा चावल इधर से, थोड़ा उधर से। उसके पीछे चिंतन क्या है, एक घर से पूरा ले लेंगे तो उसका पूरा ही खत्म हो जाएगा। 2 आदमी के लिए उसने भोजन बनाया है, क्यों? अगर तुम ले आओगे पूरा का पूरा तो उसे द्वारा ही बनाना पड़ेगा ना, तो वो तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं हो। हम थोड़ा थोड़ा लाएंगे तो अनेक घर से भी लाने लग गए। उसी परंपरा से दिगंबरों में ऐसा होने लग गया कि वो एक घर में जैसे उनका प्रगमन हो गया तो वो उनके यहां तो हार बना ही है, और अड़ोसी पड़ोसी भी अपने घर से ला करके तो उनके यहां हार देने देते, क्योंकि अनेक घर का ले सकते, उनका अनेक घर ऐसा आगे लेते हैं अनेक घर से, इनका अनेक घर ऐसा हो गया। अब एक और उसमें तकलीफ हो गई, क्या तकलीफ हो गई कि जैसे सीताम्बर साधु अपना लेके आए तो कभी कभी गुरुजी नहीं जाते हैं, शिष्य ही ले आते हैं, उसमें से गुरुजी ले लेते हैं, तो वे कितना लाएंगे कितना नहीं लाएंगे। ये तो निश्चित है कि कभी कम तो पढ़ने वाला है नहीं, और ज्यादा बचेगा तो उसे फिर कहां फेंकेंगे, फिर वे किसी पशु पक्षियों को खिलाएं, कहीं फेंकें, सड़ेगा गलेगा, वो बहुत बड़ी समस्या है। अब अपना ही है देखो कि भोजनालय में जो भोजन करते हैं वो तो भोजन करते हैं, पर जिनके यहां टिफिन जाता है जाएगा, हमारे यहां तो परमिशन नहीं है किसी को, अभी धोखे से डालता हो तो वो बंद हो जाएगा टिफिन नहीं, क्यों कि टिफिन में मात्रा कैसे नक्की हो, तो ज्यादा ही जाएगा फिर तो वहां फेंकेगा, फिर तो वो सड़ेगा, फिर तो कुछ होगा ना। यहां तो थाली में उतना ही लेगा जितना खाएगा, वो खाने वाला तो यहां है नहीं, लाने वाला दूसरा है, रखने वाला दूसरा है, अब वो इतना तो कम तो रख नहीं सकता कि वो भूखा रह जाए, है ना। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये बंबई में तुम्हारे 24 हाउस चलते हैं ना, तो वे टिफिन आते हैं दुकानों में, तो हमारी दुकान में टिफिन आता है, एक आदमी का टिफिन आता है वो तीन जने खा लेते हैं, फिर भी बचा रहता है। जहां एक ही खाने वाला होगा, इतने ज्यादा खाने वाला भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश का फिर बचता होगा, फिकता होगा। अकेले फेंकने के सवाल अनाज की बर्बादी की समस्या नहीं है, वो आहार जहां वो सड़ता है, फिर जहां पड़ा रहता है वो सड़ता है, गलता है, गंदगी पैदा करता है। ये विद्यार्थियों के भी वहां पर जो विंग है, मैं तो कभी गया नहीं, जा भी नहीं सकता इस भ्रम में, क्योंकि जीना चढ़ता ही नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि वो वहां सड़ता रहता है पड़ा पड़ा। ये किसी दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। वास्तव में तो गृहस्थ के घर आहार की जो विधि पूर्वक बैठ के खाना, बैठ के खड़े होकर जो भी नियम है, गृहस्थ है ना वे, तो वे भी बैठ के खा, कोई बीमार है अस्पताल में है, पलंग पे से उठ नहीं सकता है, तो उसका आना, वो जीना चढ़ नहीं सकता है, ऊपर भोजनालय है तो उसके लिए आना वो अलग बात है, वो घर वाले ही लाते हैं, वो जानते हैं कि कितना खाते हैं, वे उतना ही लाते हैं, और फिर और जरूरत होती है तो द्वारा लाके परस देते हैं, समझ गए ना। तो वो व्यवस्था एक अलग बात है, लेकिन सहज भाव से ही बिना ही मतलब के और अपने घर में टिफिन मंगा मंगा के खाना, ना ये परंपरा अच्छी है। अब सीतम्बरों को तो अपन क्या कर सकते हैं, यदि वो अच्छी होती तो दिगंबर भी ऐसा करते, दिगंबर तो ऐसा करते नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन वो प्रश्न अधा कर्म का क्या अर्थ है, मेरे ख्याल से प्रश्नोत्तर अपन ने पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे। साधुजन यह कहें कि ये सब गुरुदेव के कोटेशन है शायद, हमारे लिए अमुक प्रकार की आहार पानी बनाओ तथा गृहस्थ उनके निर्देशानुसार आहार बनाए तो वह अधा कर्म से उत्पन्न हुआ आहार है। अब ऊपर एक कहा था वो खुद बनाए, जो अधा कर्म है ना जो बनाए, अब कहते साधु कहें किसी से, तो वो तो उद्देश्य में भी चला जाता है ना, ऐसा है ना। साधु अपने आहार के बारे में किसी श्रावक से कभी कुछ भी नहीं कहते, अपने आहार बनाने का निर्देश नहीं देते। अब ये जो अंतर आ रहा है वो मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, आप पढ़ने से आपका ध्यान जाए नहीं जाए, ध्यान सुने ना। और उद्देश्य का आहार क्या है, अब साधु ने गृहस्थ से स्पष्ट तो नहीं कहा, अब जब उसको इसमें ले लिया ना तो अब उसी में से दो भेद करने पड़े, वो राजमल जी की समस्या हो गई। राजमल जी की समस्या क्या थी मालूम, कुछ दो चार दिन पहले अपन ने बताई थी कि जब उन्होंने असद्भूत व्यवहार न्याय को माना ही नहीं, स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद और शरीर को, तो अब जो चार भेद वो सद्भूत वाले में चार करने पड़े, ऐसे ही यहां हो गया, क्योंकि उनने प्रेरणा दे के आर्डर दे के बनवाया कि मेरे लिए ऐसा बनाओ, वो अब उसी में दूसरे से बनवाने के दो भेद कर दिए, उन्हें तो अधाकर्म बनाना और उद्देश्य में बनवाना ऐसा अलग अलग था ना। देखो साधु ने गृहस्थ से स्पष्ट तो नहीं कहा कि मेरे लिए अमुक प्रकार से आहार बनाओ, परंतु उन्हें यह ज्ञात भी हो जाए कि गृहस्थ ने हमारे उद्देश्य से विशेष व्यवस्था की है, तो आहार उन्हें उद्देश्य का आहार हो गया, अतः वे अपने उद्देश्य से बने आहार को भी ग्रहण नहीं करते। अभी देखना प्रवचन सार में जो है ना चंदन योग सूचक चूल का, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मैं यहां देख रहा हूं इसमें प्रवचन सार नहीं है और सब है, मैं निकाल के बताता मैं आपको कि मुनिराज गृहस्थों से अपने वृद्ध गुरुजन और वृद्ध साधुओं के लिए यदि उन्हें कोई बीमारी वगैरह है तो उनके आहार में वो दवा आदि को मिलान करें, ऐसा है। वो ग्रस्तों से चर्चा इस बारे में कर सकते हैं, ऐसा है ना, पढ़ा ना तुमने, तो अब देख इससे टकरान हो जाएगी ना। हम और आचार्यों की उपेक्षा कर दें, लेकिन जिस कुंद कुंद और अमृतचंद्र की हम इतने बड़े भगत हैं उनकी उपेक्षा तो नहीं कर सकते हैं, पर इसमें जरा सी भी भूल रह जाना वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत अहितकारी है, इसलिए उसमें गंभीरता से उसको समझना चाहिए। कोई निकाल के मुझे लाके बताएगा कि मुझको इन्हें खोजना पड़ेगा इसमें? रमेश तुम निकाल सकते हो, तुम बता रहे हो ना कि ऐसा ऐसा इसमें लिखा है। अभी अपन इसमें समय खराब नहीं करते हैं, कल निकाल के रख लेना निशान लगा करके, है ना। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, माने इसमें ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अपने शिष्यों के वो बीमार आदमी मुनि हों ये हों संघ में तो वो गृहस्थों से चर्चा करें। अब दवाई देने का भी विधान है तो वो किसी वैद्य से महाराज को दिखवा कर और फिर वो दवाई तैयार करवाएंगे और फिर जहां भी महाराज का आहार होगा वे वहां ले जाएंगे और उसके घर में उनके भोजन में वो दवाई मिलाएंगे, शुद्ध सात्विकता औषधि, माने खनिज औषधि। तीन तरह की औषधि होती है, एक तो जैसे खनिज बोलते हैं, जैसे कि नमक है, कौन सा नमक, सेंधा नमक जो खान से पैदा हुआ है, और जो सोना है चांदी है ये सब खनिज पदार्थ हैं, मान जो पत्थर एक तरीके समझ लो जो खदान से पैदा हुए हैं, खदान तो समझते ना, और दूसरे हैं कास्ट जो लकड़ी से बनती है वो औषधि, और तीसरी फिर वो है खतरनाक जो प्राणी तृष्ट जीवों के शरीर से बनती है, तो वो तो खाएंगे ही नहीं वो। अब खनिज और एक कास्ट औषधि, अब कास्ट में भी जड़ वाली नहीं, माने अदरक नहीं, सौंठ भी नहीं, जो ऊपर का हिस्सा है, और वैसी औषधि उनके आहार में मिला के उन्हें देते हैं, ऐसा सब विधान शास्त्रों में है। तो ये यदि जैसा ये कहा कि हमें किसी भी तरीके से पता चल जाए है तो भी नहीं लेंगे, ये बात पे जरा विचारनीय बात है। आचार्य जयसेन के अनुसार भोजन बनाने की क्रिया अधा कर्म है, समझिए ना, और पंडित जयचंद जी छावड़ा और जिनेन्द्र बर्णी के अनुसार हिंसादि से निष्पन्न आहार अधा कर्म है, तथा स्वामी जी के अनुसार स्वयं बनावे अथवा चाहे कहकर बनावे प्रेरणा देकर बनवावे भोजन पकाने की क्रिया आरंभजनक होने से आधा कर्म है। यानी मैं दो मुद्दे खास रहे कि वो हिंसाजनित है ना, इसलिए वो मुख्य रूप से अधा कर्म है और ये किसी को वो स्वयं बनाए माने बनाने में उसका इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। उक्त सभी कथनों का तात्पर्य यह है कि अत्यंत सावधानी पूर्वक भोजन बनाने में भी आरंभ जनित जो हिंसा होती है उस हिंसा का भागीदार बनाने वाला तो है ही, बनवाने वाला भी है, समझिए ना, प्रेरणा देने वाला भी है। इस कारण बनाना, बनवाना और अनुमोदना करना सभी अधा कर्म हैं। तो गुरुदेव की बात भी इसमें आ गई कि उन्होंने प्रेरणा देके बनवाया तो अनुमोदना में आ गया ना, कराने में आ गया, करना कराना और अनुमोदना करना। यही कारण है कि मुनिराज बनाने बनवाने की क्रिया प्रक्रिया में मन से, वचन से, काय से किसी भी रूप में प्रवृत्त नहीं होते, संलग्न नहीं होते। यही उनका अधा कर्म दोष से दूर रहना है। क्या? अब इसी प्रकार बसती, धर्मशाला आदि के निर्माण कार्यों में भी मुनिराजों को व्रत रहना चाहिए। अपन यहां तक आ गए थे और बसती पे अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी ना, किसी के बीच में वो आ गया था क्या संत निवास। उद्देशक आहार के संदर्भ में तो सभी एक मत से कहते हैं कि पात्र के निमित्त से निर्मित भोजन ही उद्देशक आहार है। तात्पर्य यह है कि साधुजन भोजन बनाने की प्रक्रिया से पूर्णतः असंपृक्त रहते हैं। असंपृक्त माने जुड़ते नहीं है, बिना जुड़े रहते हैं। मन वचन काय कृतकाय अनुमोदना से उस प्रक्रिया से भी नहीं जुड़ते हैं। यदि वो मन वचन काय कृतकाय अनुमोदना से उस प्रक्रिया से नहीं जुड़े हों, भले ही गृहस्थ ने उनके उद्देश्य से बनाया हो तो वो बिल्कुल निर्दोष आहार है। गृहस्थ से की गलती के लिए दोषी मुनिराज नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि साधुजन भोजन बनाने की प्रक्रिया से पूर्णतः असंपृक्त रहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि कोई उनके उद्देश्य से भोजन बनाए, तत्संबंधी आरंभ करे, क्योंकि वे स्वारंभ, सर्वारंभ और सर्वपरिग्रह के पूर्णतः त्यागी हैं। मन वचन काय से त्यागी हैं, कृतकारत अनुबोधना से त्यागी हैं, नव कोटि से त्यागी हैं। यही कारण है कि वे उनके उद्देश्य से बनाए गए आहार को ग्रहण नहीं करते। उक्त संदर्भ में इन्हीं गाथाओं की टीका समागत आचार्य जयसेन का निम्नांकित कथन महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। देखो अभी तक अमरचंद का की टीका नहीं आई गाथा की, ये सब गाथा पे ही अपन ने पहले डिस्कस किया है, इसलिए अमरचंद का मत अभी सामने नहीं आया, समझे ना। ये जयसेन का द्वारा आ रहा है, है ना, एक दफे देख लिया अपन ने। यहां अभिप्राय यह है कि भविष्य में, भूत में और वर्तमान में कभी भी योग्य आहारादिक के विषय में मन वचन काय कृतकाय अनुबोधना रूप नौ प्रकार के विकल्पों से जो शुद्ध है, रहित है, उनके द्वारा बनाए हुए आहार आदि के विषय बंध नहीं हो सकता। अच्छा, उनको यदि दूसरे परिणामों के द्वारा बंद हो जाए तो फिर तो कभी भी किसी को निर्माण नहीं हो सकेगा। ये कह रहे कि गृहस्थ को ने बनाने का विकल्प था और एक गृहस्थ ने दूसरे गृहस्थ को प्रेरणा दी थी और उसकी वजह से यदि मुनिराजों को दोष बंद होने लगे तो कभी किसी को फिर मोक्ष होगा ही नहीं, है ना? फिर बसती का बनेंगे ही नहीं। अब एक इसमें है मर्म की बात कि शास्त्रों में ये सब बात लिखी है, अब मुनिराज ये समझाएं कि नहीं समझाएं, और जैसे ने और रामचंद्र ने समझाया कि नहीं समझाया, यानी जब स्वरूप आएगा तो वे प्रचन में ये बात समझाएंगे, शास्त्र में भी लिखेंगे, लेकिन उसमें रंत मात्र भी उनका अपने लिए उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन सारे जैनी आहार मुनिराजों को कैसा दिया जाना चाहिए, मुनिराज किस प्रकार का आहार लेते हैं, ये बात अली प्रकरण से आए तो उनको बताना उनकी ड्यूटी है। इस भय से कि यदि मैं आहार दान की प्रक्रिया को समझाऊंगा तो मुझे आहार का वो दोष लग जाएगा, तो उनको उससे विरक्त भी नहीं होना चाहिए। और इस बहाने रोजीना आहार देने की विधि पर व्याख्यान करते रहना हर गांव गांव में जाकर, क्या क्योंकि हर गांव में 3 दिन ठहरते हैं छोटे गांव में, और 3 व्याख्यान होंगे, रात में तो बोलते नहीं है, क्यों? फिर बस वो यही समझाते रहेंगे कि आहार देना चाहिए, प्रेरणा देते रहेंगे, और ऐसा ऐसे लेते हैं मुनिराज, ऐसा नहीं करते तो उद्देश्य हो ही जाएगा ना। लेकिन उन्होंने वो सामूहिक स्वरूप बताया, किसी से नहीं कहा कि तुम बनाना और मैं आऊंगा मुझे देना, तो वो बिल्कुल निर्दोष है ना। अब आते हैं, नव कोटि कम में शुद्धो पच्छा पुर दो ये काले
पर सुर दुखण मितम वज्जति जन तिणे वाणम।
मुझे वैसे मुझे पता रहता है कि मैंने कल कहां तक पढ़ा था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण होने से मैंने इसे अनेक बार पढ़ा, तो मेरे अब दिमाग में वो यहां पढ़ा था कि मैंने घर पे पढ़ा था, है ना? वो नहीं है तो पढ़ा हुआ लगता है, आप समझिए ना। इसलिए मुझे नहीं कि कल तक कहां तक पढ़ा दिया था, वैसे तो मुझे हमेशा याद रहता है, लेकिन मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और इसमें रंत मात्र भी शास्त्र के विरुद्ध बात अपने वाणी से नहीं निकलना चाहिए और किसी का भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। और दिगंबर आचार्यों की बात हमेशा मुख्य रूप से रहना चाहिए, समझे ना। उस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि हम विद्वान लोग जो भी सब समझ सकते हैं सर के नहीं समझ सकते हैं, फिर भी उनने प्रैक्टिकल नहीं किया ना। तब भी मुनिराज तो प्रैक्टिकल करते हैं, खासकर अमृतचंद्र जैसे मुनिराज, जयसेन जैसे भी मुनिराज, अब जिनको हम आगम के सर्व संदर्भ में पूर्णतः प्रमाण मान रहे हैं, हम इस संदर्भ में उनको कैसे शिथिल मान सकते हैं, उसके आधार पर हमें कोई निर्णय करना चाहिए। त्रिकाल संबंधी कार्यों से मन वचन काय व कृत कार्य अनुमोदना रूप नव कोटि से शुद्ध जीव भी दूसरों के सुख दुख के निमित्त से यदि बंधने लगे तो फिर किसी को भी मुक्ति संभव नहीं होगी। यानी दूसरे ने हमारे लिए बनाया इसलिए हम बन जाएंगे, हैं? तो फिर वही बात हो गई ना, गलती तो दूसरे ने की और बन गए हम, हमारा तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से, है ना, तो भी नहीं है। अब आजकल तो इतना होने लग गया है, सारा देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये बिल्डिंग यहां ऐसा था, फला महाराज ने इसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया और फिर बना दिया, यानी बच्चे बच्चे को मालूम है। क्यों फिर दादा आप जाए पर पूछें तो भी कह देंगे नहीं मेरा क्या, ग्रस्त लोग कर रहे हैं, मैंने क्या। तो इसमें वो जो भी वो यदि अपराध है तो वो तो है ही, और साथ में ये झूठ बोलने का भी अपराध हो गया। और वे लोग जो ज्यादा के लोग कह रहे कोई तो महाराज की आज्ञा की इच्छा ऐसी है तो तुम दो, तो वे लोग भी महाअपराधी हो गए। क्यों? कि वो महाराज की तरफ से बोल रहे हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री का नाम ले रहे को उनने ऐसा कहा है और तुमसे काम करने के लिए कहे प्रधानमंत्री का नाम लेकर के, तो फिर क्या बोलो, है ना। अब मान लो प्रधानमंत्री को मालूम पड़ जाए कि ये लोग मेरे नाम से ऐसा कर रहे हैं और फिर भी वे चुप रहे तो मतलब यह है कि मैं ऐसा कुछ कह करके किसी व्यक्ति विशेष का बचाव नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं खिंच जाना चाहिए कि जैसे फिर वो मुनि धर्म संभव ही ना रह जाए, जो पंचम काल के अंत तक जिसकी संभावना है ना, वो संभव ही ना रह जाए, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। उसका क्या होगा शांति जी, जब एक ही परिवार ग्रस्त रहेगा और एक ही मुनि अर्का रहेंगे और वे उन्हें आहार लेने जाएंगे, क्यों तुमने मालूम है एक ही है देश में बचा ही नहीं है क्यों, और उसके यहां लेने गए तो क्या है, उनने तो नहीं बनवाया, बे इन्वॉल्व नहीं है। और जब वो टैक्स मांगा जाएगा, मेरे कहने का मतलब जब देश में कम देनी है, इसमें एक मुनि का क्या अपराध है बेचारे का, आचार्य जयसेन के उक्त कथन से यह बात एकदम साफ हो जाती है कि यदि आहार बनने की प्रक्रिया में मुनिराजों का मनमचाएं कृतकार्य अनुमोदना नव कोटि से प्रवर्तन नहीं है, संलग्नता नहीं है, तो उन्हें अधा कर्म और देशिक दोष भी नहीं लगेंगे। किंतु यदि नव कोटियों में से एक भी कोटि टूटती है तो मुनिराज को दोष अवश्य लगेगा। दोनों तरफ की बात कह दी है, अब उसका पता तो उनको ही चल सकता है। अब दूसरे का काम नहीं कि हम पहले पता लगाते फिरे और फिर गवाही सफाई इकट्ठे करते फिरे। आहार संबंधी अधा कर्म दोष और औद्देशिक दोष मुनिराजों के ओर से ही है, मुनिराज के लिए ही है, अतः इनसे बचने की पूरी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की है। ये सब क्या करें, ग्रस्तों ने हमारे उद्देश्य मना दिया तो हैं, हम क्या करें। अरे तो लेकिन तुम तो इन्वॉल्व नहीं हो ना, तो सब वो ग्रस्त की तरफ से कोई ऐसी बात कुछ भी हुआ हो तुम अपराधी नहीं हो। यद्यपि ग्रस्त द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जिम्मेवारी मुनिराज की नहीं है, तथापि यदि मुनिराज की रंच मात्र भी सक्रियता उस ओर होती है तो वे उक्त दोषों से बच नहीं सकते। यह तो गाथाओं में उदाहरण के रूप में समागत अधा कर्म आहार और उद्देश्यक आहार की सामान्य चर्चा हुई। गाथाओं का मूल प्रतिपादन तो कुछ और ही है, जिसे आगे स्पष्ट किया जा रहा है। ये भी हुआ था ना, नहीं हुआ था, चलो जो मैंने कहा था ना कि यहां पर प्रकरण क्या है, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, तो इसको उदाहरण से समझा रहे। अब वो उदाहरण दिया अपन ने, अभी तो वो अधा कर्म और उद्देश्यक आहार का स्वरूप समझा है, अब उससे इसका किस तरह मिलान होता है उसकी चर्चा आप करते हैं। देखो इन गाथाओं का भाव पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब फिर एक दफे जयचंद जी छाबड़ा जयसेन सब आएंगे। अभी आप यहां मुस्करा रहे हैं, जब लिखा होगा हमने तब उसमें कितनी कितनी दफे को छांट के इसको अलग रखना, इसको अलग रखना, ये पहले स्पष्ट हो जाए तब बाद में फिर इसे स्पष्ट करना, पहले अधा कर्म और उद्देश्य आहार का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, फिर यहां से उदाहरण कैसे घटित होता है और उससे फिर क्या सिद्ध करना है अंत में दादा, कि आत्मा इनका अकर्ता है, वो आपको सिद्ध करना है। ये आज पेज में पूरा मिलान दिमाग से पूरा पहले स्पष्ट होना, फिर आगे किस क्रम से क्या रखना, वो सब बहुत व्यवस्थित माइंड का काम है इसमें। यहां अधा कर्म और उद्देश्यक आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की निमित्त निमित्तकता दृढ़ की है। ये देखो मुझे तो जयचंद छाबड़ा इन पे बहुत 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 प्रमोद आता है कि जो अपनी समझ में आई ना तो उनकी समझ में आ गई थी, इसका आनंद आता है। उनकी समझ की गहराई अपन जाके गहराई में जाएं तो अपन को पता लगती है। जिस पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अधा कर्म कहते थे। फिर आए जयचंद छाबड़ा तो अपनी जगह कहते हैं। अब जयचंद जी छाबड़ा को कोई मुनि नहीं थे उस समय, मालूम उस समय मुनि थे ही नहीं, और ये भट्टारक अपने को मुनि कहते थे, ऐसे नाम रख लिए थे, फलाने आचारी जिनसेन आचार्य थे सब नाम भट्टारकों ने, जितने अपने पुराने मुनियों के नाम थे ना आचार्यों के, सच्चे आचार्यों के, वो सब ने अपने नाम रख लिए। तथा उस आहार को भी अदा कर्म कहते हैं। जिस पाप कर्म से उत्पन्न हुआ हो तो उस पाप कर्म को अदा कर्म कहते हैं, और उससे वो जो आहार बना उसे भी अदा कर्म कहते हैं। दो समझ में आए ना, दो क्या है बता बता कौन क्या क्या क्या। जिस पाप कर्म से वो आहार बना वो पाप कर्म, और जो आहार बना वो भी, उन दोनों को अधा कर्म कहते हैं। हमने जो पाप किया उससे जो वो भोजन बना, तो वो जो पाप किया वो है अधा कर्म, असली तो अधा कर्म वो है। अब उससे जो भोजन बन गया वो तो ही अधा कर्म है, लेकिन अब उसको भी अधा कर्म कहते हैं। देखो है ना, जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से ही बनाया गया हो उसको उद्देशक कहते हैं, उद्देशक आहार कहते हैं। ऐसे अधा कर्म और उद्देशक आहार का जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया, प्रत्याख्यान माने त्याग, उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं किया, और जिसने तत्वज्ञान पूर्वक उस आहार का प्रत्याख्यान किया उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान किया। वे द्रव्य भाव दोनों हो गए। इस प्रकार समस्त द्रव्य और भाव को निमित्त निमित्तक भाव जानना चाहिए। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है उसे रागादि भाव भी होते हैं। माने जी कि मैंने किताब ले ली और मुझे कहते राग नहीं था, मैंने वैसे ही ले ली, कहते ऐसा नहीं होता है। जिसने परद्रव्य का ग्रहण किया तो उसे परद्रव्य को ग्रहण करने का राग भाव भी अवश्य हुआ ही है ना। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है उसे रागादि भाव भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है, इसलिए कर्म का बंध का भी करता है। जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उसे ग्रहण करने का राग नहीं होता, इसलिए रागादि रूप प्रणमन भी नहीं होता, इसलिए आगामी बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। अब इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। अब आत्मख्याति टीका आ रही है। जिस प्रकार अधा कर्म और उद्देश्य से उत्पन्न निमित्तभूत आहारादि उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा माने मुनि नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग नहीं करता, उसी प्रकार समस्त परद्रव्यों का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उनके निमित्त से होने वाले भावों को भी नहीं त्यागता। वही कहते अपन ये कहें कि मैंने ये काम तो कर लिया है ना, लेकिन मेरे को भाव नहीं थे, क्योंकि ये कार्य उस भाव पूर्वक ही होते हैं। कोई कहे कि मैंने हिंसा की पर भाव नहीं थे, झूठ बोला और भाव नहीं थे, है ना। तो अब इसमें तो कह सकते हैं कि बहुत सी हिंसा ऐसे होती रहती है, हमारे पेट में जीवाणु हैं, हमने कभी बाहर से आहार किया वो उनके लिए प्रतिकूल पड़ा, फिर मर जाएंगे, तो फिर हमारा उसमें क्या है। अब जीव तो मरे और उनका हमने त्याग नहीं किया तो भाव है कि नहीं। बोले तो कहते भैया जी आहार बनाने और उद्देश्य बनाने के संदर्भ में बात चल रही है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमें आहार बनाने का राग नहीं हो और बराबर हम आए घर में आहार बन जाए, फटाफट चूरा जल जाए अपने आप नहीं हमारे राग के, ये राग की आग पहले यहाँ जलती है तब वो वहां जाकर के चूल्हा मन गैस का चूल्हा जो भी चूल्हा आप जलाते हो वो जलता है, मानो पहले इंद्र विकल्प होता है ना, तब जलता है ना। तो वो ये कह रहे हैं, कोई ये कहे कि हमने भाव प्रत्याख्यान कर दिया और द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं किया तो नहीं चलेगा। द्रव्य प्रत्याख्यान का और भाव प्रत्याख्यान का निमित्त निमित्त का संबंध है। इसका मतलब ये है कि जब एक का त्याग होगा तो दूसरे का त्याग होगा, माने दोनों का एक साथ त्याग होगा। अधा कर्म अर्थात पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वस्तुता तो करता ही नहीं है। अब वो कहते परम शुद्ध निश्चय ऐसे कि वो आत्मा त्रिकारी द्रव है और वो तो कुछ करता ही नहीं है, कि वस्तुता तो करता ही नहीं है। जिस हमने भोजन बनाया ना तो गुरुदेव फरमाते थे ना, बाई ने रोटी बनाई ये गलत है, बाई रोटी बना ही नहीं सकती, बनाती नहीं है, क्योंकि वे दो द्रव्य हैं, बेलन अलग है और रोटी अलग है और बाई अलग है। न बाई ने बेलन चलाया न बेलन से रोटी बनी, समझाते थे ना, ये अंतिम बात उसकी चल रही है। जो वास्तव में तो करता नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण ये तो पर्याय में होता है, वो वास्तव वाले में त्रिकाली ध्रुव में थोड़ी होता है ना, क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम हैं, इसलिए उन्हें आत्मा का कार्यत्व का अभाव है। इस कारण अधा कर्म उद्देश्य कर्म पुद्गल कर्म मेरे कार्य नहीं है, क्योंकि वे सदा अचेतन हैं, इसलिए उनको मेरे कार्यत्व का अभाव है। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्त भूत उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा माने मुनि जिस प्रकार नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त प्रद्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा उनके निमित्त से होने वाले भावों का भी प्रत्याख्यान करता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिक बना है। इनने प्रतिक्रमण छोड़ दिया, वो प्रत्याख्यान पे सब घटित किया है ना, भविष्य की बात पर। अब आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में उक्त दोनों गाथाओं के साथ में एक गाथा और भी प्राप्त होती है, और वे गाथाएं उक्त गाथाओं की पूरक गाथाएं ही हैं। उन गाथाओं का क्रम इस प्रकार है, इनमें नई सिर्फ एक गाथा है, बाकी तीन पुरानी गाथाएं हैं, और वो पढ़ लो ये गाथा।
आधा कम्मा दिया पुगल धवस जे में दोसा, कहते को वदिराणी पर दब गुणाहु जे चम। आधा कम्मा दिया पुगल धवस जे में दोसा, कह मणु मण दियणे लकीर माणा परस गुणा। आधा कम्मम उद्दे सियम च पोगलमयम इमं दवम, कहतम मम होदि कदम जमिणिश्चम चेदिणम वृत्तम। आधा कम्मम उद्दे सियम च पोगलमयम इमं दवम, कहतम मम कारविदम जमिणिश्चम चेदिणम वृत्तम।
इनकी एक गाथा बड़ी है, तीन तो पुरानी है, यदि उस वक्त समझदारी से काम लेते तो इनका पद्यानुवाद यहां दिया जा सकता था, अभी तो नहीं दिया है ना। अधा कर्म आदि जो ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, उनको सम्यक ज्ञानी कैसे कर सकता है, क्योंकि ये सदा ही पर द्रव्य के गुण हैं। अब वो सिद्धांत लगा रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है ना। अधा कर्म आदि जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, ये दूसरे के द्वारा किए हुए गुण हैं, तो ज्ञानी उनकी अनुमोदना कैसे कर सकता है। ये अधा कर्म और उद्देश्य पुद्गल द्रव्य में होने से सदा ही अचेतन कहे गए हैं, वे मेरे द्वारा किए कैसे हो सकते हैं। ये अधा कर्म और उद्देश्य पुद्गल द्रव्य में होने से सदा अचेतन कहे गए हैं, ये मेरे द्वारा कारित भी कैसे हो सकते हैं, मेरे द्वारा कराए भी कैसे जा सकते हैं। अभी और कुछ नहीं है इसमें, चार मन वचन कहा है और कृतकार्य अनुमोदना, इन तीनों को जोड़ करके सारी बात की है। उक्त चारों गाथाओं में से पहली और तीसरी गाथा तो आत्मख्याति में आ ही चुकी है और दूसरी और चौथी गाथा तात्पर्य वृत्ति में विशेष आई है। उक्त चारों गाथाओं को उनके अर्थ सहित बारीकी से देखते हैं तो पहली और दूसरी गाथा तथा तीसरी और चौथी गाथा लगभग एक सी ही हैं। पहली गाथा में करने की बात की है और दूसरी गाथा में अनुमोदना की बात की है। इसी प्रकार तीसरी गाथा में करने की बात की है और चौथी गाथा में कराने की बात की है। बस मात्र इतना अंतर है। इसमें कृतकार अनुमोदना तीनों हो गई ना। आचार्य जयसेन ने इन गाथाओं की जो टीका लिखी है उसमें भी इससे अधिक कुछ नहीं है। इन गाथाओं को जुड़ने से इतना ही हुआ कि करने के साथ कराना और अनुमोदना करना भी जुड़ गए हैं। इस प्रकार नव कोटि से त्याग की बात पर बल पड़ गया है। इन गाथाओं की टीका में आचार्य जयसेन ने जो विशेष तात्पर्य लिखा है उसकी चर्चा उद्दिष्ट भोजन के संदर्भ में की जा चुकी है। अब यहां कुछ लिखना अभीष्ट नहीं है। अब इन गाथाओं के भाव को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब फिर स्वामी जी का आएगा और फिर गुरुदेव का है, गुरुदेव का भी आएगा और फिर आगे अपन पढ़ेंगे अपना निष्कर्ष। देखो स्वामी जी का है ना, स्वामी जी का ही आया ना। यहां औद्देशिक व अधा कर्म को का तो दृष्टांत मात्र दिया है। देखो अभी गुरुदेव ने भी वो बात पकड़ी ना कि ये तो वैसे ही आ गए दृष्टांत के रूप से। और हमारा दुर्भाग्य था कि हम दोनों को समझते नहीं थे तो इतनी मेहनत हमको इस बात के लिए करनी पड़ी कि उनका स्वरूप समझे। उद्देश्य आहार की बात तो किसी ने सुनी भी है। अधा कर्म तो लोगों को बिल्कुल अटपटा लगता है। उद्देश्य का उद्देश्य आहार के त्यागी होते हैं मुनिराज में समझते हैं ना। वस्तुतः सिद्धांत तो यह है कि समस्त परद्रव्य देखो जिसमें देवशास गुरु जैसे परम पूज निमित्त भी सम्मिलित हैं उन सबके लक्ष्य को छोड़ता हुआ साधक उनके निमित्त से हुए राग को भी छोड़ता है। उस साधक का ज्ञान अत्यंत स्थिर हो जाता है। बस इसी का नाम प्रत्याख्यान है। तो स्थिर हुआ ज्ञान ही त्याग आ गया ना। भाई यहां समस्त निमित्तिक नैमित्तिक संबंध तोड़ने की बात है। निश्चय से मुनि मार्ग तो एक शुद्धोपयोग ही है। पर्व संबंधी जो विकल्प हैं उनमें मुनित्व नहीं है। जय धवला ग्रंथ में तो अब ये बात जय धवला की है गुरुदेव की नहीं है। स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है कि मैंने एक शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी। ये प्रोचनसार की गुन्यासिनी गाथा। परंतु मैं उसमें नहीं रह सका तथा यह छह काय के जीवों की दया का विकल्प हुआ। मारने का नहीं, निर्दोष आहार लेने का विकल्प हुआ। इससे मेरी वह प्रतिज्ञा टूट गई। कौन सी है? शुद्धोपयोग की। इसके प्रत्याख्यान भंग हुआ क्योंकि पर की ओर अपने मन का झुकाव होना विकार है और दोष है। एक स्वद्रव्य की ओर का झुकाव होना ही निर्विकार है। मुन्यासी में गाथा में भी लिखा है ना कि तूने शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी और तू अब शुभ भाव रूपी क्या है अभिसार का। कौन सी अभिसार का? धूर्त अभिसार का के चक्कर में पड़ गया है। और शुभ भाव कौन? गुरुदेव की भाषा में जेने तीर्थंकर गोत्र बनाए जिससे वो कौन भगवान के ओर का लक्ष्य अरंग सिद्ध के ओर की भक्ति का भाव। भक्ति का भाव तो दूर है, लक्ष्य वहां गया। उसको धूर्त अभिसार का कहा था है ना। कहा पढ़ रहे थे? धरना की। देखो मुनिराज को निर्दोष आहार लेने का विकल्प आता है, इससे उनका मुनित्व में कोई बाधा नहीं है, मुनित्व खंडित नहीं होता। लेकिन वो बढ़िया चीज है ऐसी कोई बात नहीं है, इससे मुनिपना नहीं जाता। किंतु यदि इन्हें अधकर्मी उद्देशिक आदि दोष पूर्वक आहार लेने का विकल्प आवे तो मुनिपना नहीं रहता। आहार का विकल्प तो आया। देखो इस बात को इतना समझो अपने गृहस्थों के संदर्भ में तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। घड़ी कितना मेरे ख्याल से हो गया ना टाइम, कह रही है 2-5 मिनट करो। क्या गृहस्थों के संदर्भ में समझ नहीं? देखो करोड़पति तो सबको बनना है, सबको बनना है माने जो जिनने प्रतिमा नहीं ली दूसरी वहां तक के सब गृहस्थों को बनना है। करोड़पति नहीं चक्रवर्ती, क्यों कि त्याग नहीं ना, परिग्रह का परिमाण नहीं है ना कि मैं इतना ही रखूंगा, तो सब अधिक से अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं ना। लेकिन फिर भी दो व्यक्तियों में अंतर है। अब उस अंतर को समझते हैं अपन। एक आदमी को एक अरबपति ने गोद ले लिया, तो एक सेकंड में स्वीकार कर लेगा क्योंकि उसे अरबपति बनना था और उसे अरबपति बन गया। अब कोई उससे एक है कि तू इस आदमी को मार डाल तो तू करो अरबपति बन जाएगा, क्योंकि ये दूसरा नंबर थे, दूसरा नंबर कैसे रहा है ना, इसको लिया है या नहीं, इसके बाद इसको उदाहरण नहीं चाहते। लेकिन दो सज्ञ की ना संपत्ति बाप की, तो इसमें एक मर जाए तो पूरी उसको भाई इसको मार डालू तो मुझे पूरी हो जाएगी। ऐसा हुआ है ना, जयपुर में ही हुआ है मालूम आपको, यहां इस लड़की के लड़के थे, उनको उनने राज्य दे के जो स्वर्गवास हो गया और उनने 7 वर्ष तक राज्य किया और उनका छोटा भाई था माधव सिंह मारा था, और एक पुल चाहिए तो अहिंसक तरीका चाहिए, समझ गए ना। और दूसरा कहता है सगे भाई को मारिए, दोनों को बनना, समझ गए, आप समझ में आ गया। परिग्रह का त्याग नहीं है तो बनना है ना, तो एक नहीं करना है बस ये भैया, और बस उसकी चाय में डाल देना है तो ये खत्म। क्यों वो कहता है चक्रवर्ती का राज मिले तो अभी ये महाकाल पाप मेरे से नहीं हो सकता। अब पुड़िया डालने की बात नहीं हो और उसे मिले तो वो एकदम लेवे तैयार है, क्यों तो समझ में आ जाएगा, बाहर से समझ में नहीं आएगा। इसको एक आदमी को मानने से मिलता, अब दूसरा कहता है इन सबको मानना पड़ेगा, क्यों सामने शत्रु की सेना खड़ी है ना, अब एक को छोड़ना है, सबको ही मानना है। और हमने गोले फेंके बंदूकें चलाई तो एक को मारने के लिए चलाएंगे, सबको मारने में चलाएंगे, एक को सबको मार के भी चाहिए। और एक कहता कि नहीं राज सुख लोहू भरी कीच का कमल है, ये राज सुख है, कमल तो है, कमल का सिंहासन तो है, लेकिन ये कमल पानी में होता है ना कीचड़ में, तो वो पानी का कीचड़ नहीं खून के कीचड़ में पैदा होता है। क्या लिखा, राज सुख लोहू भरी कीच का कमल है। अब मैं थोड़ी लंबी बात शुरू करने जा रहा हूं तो जाना मुझे के खत्म कर दो जल्दी। देखो ये महाभारत तो तुमने बहुत सुना, कौन सा कि जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि बेटा लड़ो, कोई दोष नहीं है लड़ने में, कि ये भाई बंदे ना इन्हें मार करके मुझे राज नहीं चाहिए। कि बेटा युद्ध के मैदान में कोई भाई नहीं होता, कोई बाप नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता। सामने खड़े हैं वे सब शत्रु होते हैं और इधर खड़े हैं वे सब मित्र होते हैं। बस खत्म। ये समझाया। अब एक और समझाहट है, कौन सी? कि जब सातों वो महारथी मर गए, कौरव हार गए, तो वो जो थे ना कौन भीष्म पितामह, वो सैया पर अभी भी पड़े थे वो बाणों की, मरे नहीं थे। उनको अभिशाप था कि तुम ऐसी दुर्दशा में भी मरोगे नहीं, वो तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, पड़े रहोगे। तो उनके पास युधिष्ठिर गए और सभी लोग गए, तो युधिष्ठिर ने देखा कि इतने लोग मर गए, इतने औरतें विधवाएं हो गई, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया, तो देख करके अब युधिष्ठिर को वैराग हो गया। तब तो लक्ष्मण को किसको हुआ था? अर्जुन को। अब किसको हो गया? युधिष्ठिर को। और वो कहते हैं कि अपने किन से कहते हैं? भीष्म पितामह से, कि हे पितामह, अब मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं तो सन्यासी होऊंगा। कितनी विधवाएं हो गई, कितना क्या हो गया, कितना क्या हो गया। उसने लिखा, अब वीर कहां जो विरोध करें, विधवाओं पे राज करो सुख से। अब तो विधवाओं पे राज करना है, वीरों को तो मार डाला है, अनाथ बच्चे बचे हो, विधवाएं बची, अब उन पे राज करो। राज क्या करो, उनकी तो सेवा करनी है ना, वे नहीं करते। तो ये कहानी दिनकर ने लिखी है। नाम सुना कभी? दिनकर का तो सुना होगा, लेकिन कहां लिखी है कहानी? एक कुरुक्षेत्र नाम का खंड काव्य है। क्या नाम? कुरुक्षेत्र, उसमें लिखी है। कुरुक्षेत्र माने जहां लड़ाई हुई थी ना, वो एरिया, वहां पर पड़े हैं वो भीष्म पितामह, और वहीं पर वो धर्मराज खड़े हैं, और उन दोनों की चर्चा हो रही है, और उसको दिनकर ने लिखा। जब वो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मैं तो सन्यासी होऊंगा, दीक्षा लूंगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, तब कोई व्यंग्य करता है वहीं कि अब वीर कहां जो विरोध करें, अब विधवाओं पर राज करो सुख से। ये कह रहे भी समझिए ना, मैं तो दीक्षा लूंगा। तो वो क्या समझा रहे? धर्मराज सन्यास खोजना कायरता है मन की, और है सच्चा मन चित्त ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। ये पढ़े कहीं कि नहीं, सुनी बातें कि नहीं? बिल्कुल नया है ना, पढ़ते ही कहो तुम लोग। क्या बताओ, कुरुक्षेत्र का नाम ही नहीं सुना होगा क्या? धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की। ये मन की कायरता है संन्यास खोजना, साधु होना क्या है? मन की कायरता। और है सच्चा मन जुट, मानवता क्या है? सच्ची। ग्रंथियां सुलझाना जीवन की, जीवन में जो गांठें आती हैं ना, प्रॉब्लम्स समस्याएं, उनको सुलझाना, ये है मनुजत्व। तो मतलब अब तुमने ये विधवाएं बना दी ना लाखों, और लाखों अनाथ बच्चे पैदा कर रहे, अब भागोगे कहां? ये भागना सन्यास दुनिया, वे कहते मालूम क्या? ये कहते हैं महावीर और बुद्ध पे ये आरोप लगाते हैं कि ये अपनी समस्याएं नहीं सुलझा पाए दुनिया की, तो पलायनवादी हो गए, भाग गए। ये पलायनवाद का आरोप लगता है। अब तुम कहां भाग के जाओगे धर्मराज से? वो कह रहे कौन? उस सैया पे पड़े हुए बुढ़े पितामह, बाप के बाप, बाप के बाप को बोलते हैं पितामह, तो बुढ़े ही हो गए ना। क्या भाग के कहां जाओगे? ये विधवाएं तो तुमने बनाई हैं, अब इनकी प्रॉब्लम को कौन हल करेगा? ये अनाथ बच्चे, इनको कौन पालेगा? अब तुम कैसे भाग सकते हो? वहां अर्जुन से ये कहा था, मार बेटा, और दूसरा कह रहा है कि अब जो हालत हो गई है, अब इनकी समस्याओं को समाधान करना तुम्हारी ड्यूटी है, अब तुम संन्यास कैसे ले सकते हो। फिर बहुत लंबी है, करीब 100-150 पेज की होगी, मैं सब तो सुना नहीं सकता हूं आपको। तो वो ये कहते हैं यहां तो कि भई इन विकल्पों में ये विकल्प ही, हम तो प्रतिरूप में कुछ करते नहीं हैं, लेकिन ये सारे विकल्प भी उस क्रिया के साथ ही होते हैं। जैसे कि मान लो भारत को आजाद हमने अंग्रेजों ने छुड़ा लिया, सब नेताओं ने खूब खूब जेल में काट काट के जैसे भी किया, अरब दे जैसा भी भारत दे गए, दो टुकड़े कर गए, तीन टुकड़े कर गए, क्यों? हिन्दुस्तान पाकिस्तान, और खूब दंगे मंगे, खाने को नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, तुम्हें क्या पता, हमने देखा है वो, और हमारे बराबर कोई यहां होंगे तो उनने भी देखा होगा, क्या खबरा जी। सन 47 की क्या हालत थी कुछ याद है? अनाज नहीं मिलता था खाने को, पहनने को कपड़े नहीं मिलते थे, ऐसे कपड़े मिलते थे लाइसेंस पर कि अपन लेने जाओ कि हमको एक कुर्ते का दे दो कपड़ा, तो वो कहते कि नहीं ये धोती दो मुफ्त में साथ में लेनी पड़ेगी इस भाव में। बोलो रद्दी सद्दी जो काम होता था वो भी तुम्हें टकाते थे, और बहुत कम कपड़े, यानी ऐसा नहीं कि पैसा ज्यादा दे दो तो मिल जाए, मिलते ही नहीं थे, ऐसी दशा थी इस देश की, सड़कें कैसी थी आपको पता ही नहीं है, समझे ना, थी ही नहीं, अच्छी बुरी का सवाल ही कहां है। तो उस दुर्दशा में ये सब नेता कहते अब हम संन्यास लेंगे, अब हम संन्यास लेंगे, बस अब तो हम मुनि हुए जाते, चलता क्यों? अब पूरा तोड़ दिया, अब हम संन्यास लेंगे, हमें नहीं करना, अब का संन्यास लोगे, अब तो बनाओ, अब तो बन जाने दो ना। मेरे पास कुछ लोग आए कहने सा उसका विरोध करना चाहिए, काय का विरोध करना चाहिए, जो ये तोड़ दिया ना उसका, मैंने कहा बेटा बन जाने दो, टूट तो गया ही है, ये टूटा गया है और तुमने विरोध किया, स्टिल ऑर्डर ले आए तो बनेगा और नहीं, अब वो ऐसा तो हो नहीं सकता वो बन जाए द्वारा जो टूट गया, अंतर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब वे तो भग गए अंग्रेज, अब तुम इसको संभालो, अब तुम्हारी ड्यूटी है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो ऐसे ही कहते हैं कि वो परब्रह्म में तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं, उसका तो विकल्प आया तो ही हमने प्रतिज्ञा भंग की, ऐसे कह रहे ना, इसमें पढ़ रहे अपन कहां था, यहां समस्त निमित्त निमित्त संबंध तोड़ने की बात है, निश्चय से मुक्ति मार्ग में एक शुद्धोपयोगी है, पढ़ा था ना, परद्रव्य संबंधी जो विकल्प होते हैं उनमें मनुत्व नहीं है। जय धवला ग्रंथ में तो स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है कि मैंने एक शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी परंतु मैं उसमें नहीं रह सका, तथा यह क्षय काय के जीवों की दया का विकल्प हुआ है, निर्दोष आहार लेने का विकल्प हुआ है, इससे मेरी वह प्रतिज्ञा टूट गई, इससे प्रत्याख्यान का भंग हुआ, क्योंकि पर की और अपने मन का झुकाव होना विकार है, दोष है, एक स्वद्रव्य की ओर झुकाव होना ही निर्विकार है। देखो मुनिराज, निर्दोष आहार लेने का, मुनिराजों को निर्दोष आहार लेने का विकल्प आता है, इसमें मुनित्व में कोई बाधा नहीं है, माने उनका खत्मा गुण स्थान तो हुआ लेकिन नीचे नहीं गिरे, इसमें मुनिपना नहीं जाता, किंतु इन्हें अधाकर्मी और उद्देश्य का आदि दोषयुक्त आहार लेने का विकल्प आवे तो मुनि बना नहीं रहता, ये कर तो कहां सकते हैं, वो तो परद्रव्य की क्रिया है, अरे पाप का उदय हो तो मिलेगा ही नहीं। ये कितने ही लोगों से कहें कि तुम बनाओ मेरे लिए आहार, क्यों तो लोग बना ही देंगे उन्हीं के लिए आहार, ये गारंटी है, तुम कमा के लाते हो घर में रखते हो क्यों, और तुम अपने घर में कहो कि हमें ये खाना है, बन जाएगा क्यों दादा, बन जाएगा, तुम्हें पता नहीं है तुमको घी नहीं खाना चाहिए, तुमको ये नहीं खाना चाहिए, उपदेश मिलेगा,
तो तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा नहीं बना नहीं दे सकती है तो महाराज को कौन दे देगा? पुण्य का उदय होगा तो पचास देंगे, और पाप का उदय होगा तो घर में भी नहीं मिलेगा। कहां साहब मिल जाता है आपको? देखो
यहां तो यह कहते हैं कि मुनिराज के सभी परद्रव्यों के ओर का झुकाव छूट जाता है, आहार का, विहार का, देवसास गुरु के भक्ति भक्ति के भाव का झुकाव छोड़कर एक स्वद्रव्य में आना और उसी में स्थिर रहना ही मुनिराजों का मुख्य धर्म है। यही वास्तविक मुनि दशा है। धन्य है ऐसी मुनि दशा। यदि ऐसा है तो उन्हें प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करना चाहिए या नहीं? हो गया, चलो कल।